नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प में कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान इसकी रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसान और खेती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर चौहान ने फसलों की 25 किस्में जारी की और कुछ उत्पाद किसानों को समर्पित किए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, श्री खांडू के दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारे राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, आज अरुणाचल प्रदेश विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। आप इसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सेवा करते रहे और हमारे राज्य को और भी उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के समुदाय आधारित संगठनों से राज्य सरकार को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने, राज्य के स्वामित्व वाले संसाधनों को बढ़ाने और संसाधनों को राजस्व में बदलने के लिए सुझाव देने, सहयोग करने और सहायता करने का आह्वान किया है। मंगलवार को सीएमओ में सीबीओ के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीबीओ ने अतीत में विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिन पर सरकार ने विचार किया और राज्य के वार्षिक बजट में शामिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठकें वो केंद्र होती है जिसके इर्द गिर्द राज्य का बजट तैयार किया जाता है। संसाधनों को राजस्व में बदलने के लिए श्री खांडू ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले संसाधनों के पूल को बढ़ाने के लिए दो क्षेत्रों, जल विद्युत और पर्यटन का व्यवस्थित रूप से दोहन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में नागरिकों के जीवन स्तर, पर्यटन और वाणिज्य में सुधार के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर के लिए उड़ान संपर्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू को लिखे पत्र में श्री खांडू ने बताया कि अभी तक डोनी पोलो हवाई अड्डे से कोलकाता सप्ताह में 6 बार और नई दिल्ली सप्ताह में 4 बार के लिए एक एक उड़ान संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये उड़ानें नियमित रूप से पूरी क्षमता से संचालित हो रही है, जिससे अक्सर यात्रा किराए में भारी उछाल आता है और संभावित यात्रियों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसमें चिकित्सा और अन्य आपात स्थिति भी शामिल है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ईटानगर से नई दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान सेवाओं को बढ़ाने की अपील की, जिसमें अधिमानत ईटानगर से नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त सुबह की उड़ान, ईटानगर से नई दिल्ली के लिए दैनिक उड़ानों का संचालन, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आदि जैसे अन्य प्रमुख महानगरों के लिए सीधी उड़ान संपर्क और आरसीएस उड़ान योजना के तहत ईटानगर और गुवाहाटी के बीच उड़ान सेवाओं को बहाल करना शामिल है। रविवार को बंदरदेवा पुलिस ने 115 ग्राम से अधिक संदिग्ध हेरोइन और 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां जब्त की और कथित ड्रग और वन्य जीव तस्करी में शामिल एक महिला सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। नाहरलगन एसपी मिहिन गोम्बो ने कहा, बंदरदेवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोनाजुली गांव में रात भर चले अभियान में 10 साबुन के डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें नारंगी रंग का पाउडर था जो हेरोइन होने का संदेह है, जिसका वजन 115.36 ग्राम है। इसके अलावा गिरफ्तार लोगों के कब्जे से 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय छिपकलियां बरामद की गई। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम की धारा 21 बी के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) के तहत बंदरदेवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।